தீர்த்தாஸ்பதம் சிவவிரிஞ்சினுதம் சரண்யம் பிரித்யார்த்திஹம் ப்ரணதபாலபவாப்திபோதம் வந்தே மஹாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். த்யக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்ஸித ராஜ்யலக்ஷ்மீ தர்மிஷ்ட ஆர்யவச்சசா யதகாதரண்யம் மாயாம்பிகம் தைத்தயேப்ஸிதமன்வதாவத் வந்தே மஹாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். கஸ்தூரி திலகம் நலாட்பட்டலே வக்ஷஸ்தலே கௌஸ்துபம் நாசாக்ரே வரமௌக்திகம் கரதலே வேணுகரே கங்கணம் சர்வாங்கே ஹரிச்சந்தனம் சுலலிதம் கண்டே ச முக்தாவலி கோபஸ்த்ரீ பரிவேஷ்டிதோ விஜயதே கோபாலசூடாமணி. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகீ நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. யோஸ்யோத்ப்ரேக்ஷகவாதிமத்யநிதனே யோ வ்யக்தஜீவேஸ்வரோ யஹ ஸ்ருஷ்ட்வேதமனுப்ரவிஶ்ய ரிஷிணா சக்ரே புரஃ சாஸ்திதாஹ. யம் ஸம்பத்ய ஜஹத்யஜாமனுஷை ஸுப்தஃ குலாயம் யதா தம் கைவல்ய நிரஸ்தயோ நிமபயம் த்யாயேததஸ்ரம் ஹரிம்.
சேட் ஜி கே ரே மஹாராஜ் ஜி சே, ஸ்வாமி ஜி ஆப்னே சாதுவோ கா பஹுத் சங் கியா ஹை தோ ஆப் ஐசி பாத் பதாவோ கி யதி ஏகாந்த மே பைட்டே ஹுவே ஹோ ஆர் உஸ்மே ஆலஸ்ய ஆவே தோ க்யா கர்னா சாஹியே. स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, पूरा पेट भर करके भी सात्विक भोजन किया जाए तो वो राजसी हो जाता है. साधु आश्रम में आहार की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए साधु मन में आए जैसा भोजन कर लेते हैं और फिर आलस्य आता है और नींद आती है और अजीर्ण हो जाता है. इस प्रकार से खाने पीने पर ध्यान नहीं रखने से एकांत में आलस्य आता है. फिर सेठ जी ने पूछा, यदि आलस्य आ ही गया तो उसको कैसे दूर करें? तो सीधे आसन से बैठना चाहिए. ज्यादा तो हमने विचार नहीं किया, कोई विशेष लक्ष्य भी नहीं गया, आलस्य आ जाए सीधा बैठ जाए. क्योंकि तमोगुण जब बढ़ता है तब शरीर तमोगुण से दबता है, तब कमर भी झुकती है, सिर भी झुकता है, तब निद्रा और आलस्य बढ़ जाते हैं. सेठ जी ने पूछा कि फिर जब एकांत में साधु को भी आलस्य आता है तो फिर वे उद्धार के लिए क्या करते हैं। स्वामी जी, उद्धार की बात तो कम ही करते हैं, प्राय साधुओं में विद्या की पढ़ाई की बात तो चलती है, ये विद्या पढ़ ले, ये पढ़ ले। लेकिन साधुओं में आजकल भजन करने की रुचि कमती होती जा रही है और साधुओं में भी कोई भजन करने वाले आदर्श दिखाई नहीं देते हैं। आजकल सब समाज में साधु लोग वेदांत का विशेष प्रचार करते हैं। सेठ जी ने कहा, हमने एक मुहावरा सुना है कि साधु लोग होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। ये बात तो थी कुछ और, लेकिन आजकल साधुओं में ये आदत सी बन गई, दिन में सोते हैं, दिन में सोते हैं साधु लोग। तो मैं आप लोगों से आज एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग ज्ञान की साधना करने वाले हैं उनको यह एक अच्छा अभ्यास करना चाहिए कि जो मन को भी देखने वाला है, इंद्रियों को भी देखने वाला है, वही परमात्मा है। हमने और चीजों का नाम नहीं लिया, जैसे ये देखने में आता है, ये देखने में आता है, ये तो आंख से दिखता है, तो कोई आंख को ही परमात्मा मान ले। कहते नहीं, मन से जो देखने में आए, मन भी जिसके देखने में आए उसका नाम परमात्मा है। ये थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास करना चाहिए। जैसे भगत है वो थोड़ी थोड़ी देर में हे नाथ मैं आपका हूं ऐसा बोलता है, ऐसे ज्ञानी साधक थोड़ी देर में अपने दृष्टापने को देखे कि सब चीज दिखाई देने वाली और मैं सबको देखने वाला। ये थोड़ी देर काम करे और रुक करके ऐसा करे, फिर थोड़ी देर काम करे ऐसा करे, हे नाथ मैं आपका हूं, अथवा वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव है, ऐसा जो भक्ति का मार्ग है उससे विक्षेप दोष का नाश होता है। विक्षेप माने मन का इधर उधर होना। तो जब सब कुछ भगवान है या हे नाथ ऐसे जो पुकारता है उसकी दृष्टि में भी सब कुछ परमात्मा ही होता है, क्योंकि मन में जो भी आएगा वो परमात्मा से अलग थोड़े ही आएगा। हमारे संत थे मंगलनाथ जी महाराज, सेठ जी कह रहे हैं मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी विक्षेप हटाने के लिए क्या है, तो उन्होंने उपाय बताया कि भाई तुम पहले विक्षेप मानो फिर उसको हटाओ, इतना लंबा चौड़ा काम करो ही क्यों, तुम विक्षेप मानो ही क्यों, सब भगवान है। अब मन जहां भी जाता है भगवान में जाता है, जहां भी जाता है भगवान में जाता है। अब तुमने भगवान को अलग मान लिया और संसार के और चीजों को अलग मान लिया, तब तुम्हारे मन में ये भावना होती है कि मेरा मन भगवान में नहीं गया, मेरा मन अमुक जगह चला गया, ऐसा मानो ही क्यों। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये युक्ति कई साधु भी बताया करते हैं। सेठ जी की हाँ ये युक्ति संगत बात है, शास्त्रीय युक्ति है, और गीता तो बोलती है कि वासुदेव सर्वम, जो कुछ है सो वासुदेव है, जो कुछ है सो ब्रह्म है। देखो भक्ति मार्ग वालों के लिए गोस्वामी जी ने भगवान के मुख से हनुमान जी को कितनी बढ़िया बात बताई, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो भक्त ये मानता है कि मैं तो भगवान का अनन्य सेवक हूं और हे भगवान मैं आपके चर अचर सब प्राणियों का सब स्वरूपों का सेवक हूं, हे हनुमान ऐसी जिसकी बुद्धि रहती है इधर उधर मन नहीं जाता उसकी महिमा क्या कही जाए। और सुनो ये आत्मा है ये मन और बुद्धि नहीं है। भगवान तो मन भी है बुद्धि भी है आत्मा भी है, वो भक्ति मार्ग की बात है। और ज्ञान मार्ग में आत्मा मन बुद्धि नहीं है, इसलिए आत्मा का मन बुद्धि से संबंध विच्छेद करो। अब बहुत बढ़िया बात आ रही है, मुझे तो लोग मन की चंचलता के बारे में पूछते हैं, तो जैसा अधिकारी होता है वैसा मैं जवाब भी दे देता हूं। पर आप लोगों के बीच में एक विशेष बात कहता हूं कि मन की चंचलता से भी ज्यादा बड़ी चीज मन में वैराग्य है। यदि संसार के विषयों में हमारा मन नहीं जाता है तो वो चंचलता के दोष में पड़ा हुआ भी मन कोई विशेष नुकसान नहीं करता। चंचलता एक अलग दोष है और मन में जो विषयों के प्रति राग है ये अलग चीज है। प्रायः लोग मन के राग की तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारा मन विषयों के राग में भरा पड़ा है कैसे दूर करें, इधर तो लोग देखते नहीं और मन चंचल है ये बात बोलते हैं। और वो मन चंचलता से चंचलता के उपायों को रोके तो रुकता नहीं है और वैराग्य की तरफ ध्यान देते नहीं है, क्या करें। यदि मन में वैराग्य हो वैराग्य बढ़ता जाएगा और विषयों से उपराम होता जाएगा तो मन कहीं जा ही नहीं सकता। मन की चंचलता का मूल कारण विषयों का राग है, क्योंकि जिसमें राग है उसी में ही मन जाएगा, जिसमें द्वेष है उसी में ही मन जाएगा, और जिसमें राग नहीं द्वेष नहीं उसमें यदि मन चला भी जाए तो कोई नुकसान भी तो नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने मन से विषयों का राग हटाना चाहिए। भक्ति अवस्था में भी संसार से राग हटाना चाहिए और जो संसार में राग था उसको परमात्मा से जोड़ना चाहिए, वो राग प्रेम में बदल जाएगा। भगवान पर अपने को न्योछावर कर दे प्रेम में तन्मय हो जाए। पर ये प्रेम में तन्मय कब होता है, जब वो संसार के राग को छोड़ता है। ये संसार के जितने भोग हैं इन भोगों में दोष दृष्टि रखनी चाहिए। सेठ जी ने लिखा है बताया है कि जैसे आप कहीं रास्ते चलते हो किसी स्त्री पर आपकी दृष्टि जाए तो उस समय आपके मन में कसाई की दुकान को देखने से जैसे घृणा होती है ऐसे घृणा हो तब आपको समझना चाहिए कि अब वैराग्य हो गया है। तो दोष दृष्टि करने से वैराग्य बहुत ऊंचे प्रकार से हो सकता है। और अपने मन में पूरी हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत रखने से बड़ी मदद मिलती है। एक बात और बताते हैं, संसार के चिंतन को निकम्मा समझना चाहिए। यदि संसार के भोगों में हमारा मन चला जाए तो अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि अरे तू ये क्या कर रहा है। ऐसे आप अपने को धिक्कारेंगे तो आपका अभ्यास ऐसे बन जाएगा, फिर जब आदमी दूसरे का भी तिरस्कार, दूसरा का भी धिक्कार नहीं सुन सकता तो अपना वो कैसे सुनेगा। ऐसे करते करते उसको संसार के भोग भारी लगने लगेंगे। कभी संसार का चिंतन हो जावे तो अपने पर झाड़ आनी चाहे, झाड़ माने क्रोध, क्रोध आनो चाहे। वो क्रोध अपने वास्ते है, दूसरा वास्ते नहीं है। जैसे हमारे बैरी के प्रति दोष होता है, द्वेष होता है, क्रोध आता है, ऐसे हमारा मन संसार में जाए तो अपने मन के ऊपर क्रोध करना चाहिए। जैसे संसार का चिंतन खाने को आवे, ऐसा माने संसार का चिंतन होते ही ऐसा लगेगा कि कहां ये हो गया, ये तो हमको खा देगा, ये हमको मार देगा, हमको बर्बाद कर देगा, ऐसे उसके मन में भावना आनी चाहिए। पहले तो संसार के भोगों में दुख देखे और फिर क्लेश देखे, फिर उपराम हो जाए। और इन सब बातों में यदि आदमी अपने को असमर्थ माने तो फिर भगवान के ध्यान में चला जाए। वहां थोड़ा मन को रस मिलने लगे तो मन को वहां जमे रहने देना चाहिए। फिर उसके मन में दोनों बातें आ जाएंगी कि देखो संसार के चिंतन से, संसार के भोगों से हमको कष्ट होता है। निर्गुण या सगुण, साकार या निराकार, भगवान के ध्यान में हमको आनंद मिलता है। जब तक उसको आनंद नहीं मिलता तब तक वो संसार के भोगों में दौड़ता है। यदि उसको भगवान की तरफ चलने में आनंद लगने मिलने लगेगा तो ये संसार तो अपने आप विघ्न कारक है, ये बात किसी के कहने की जरूरत नहीं, अपने आप मन में पैदा हो जाएगी। अब एक बात और बताते हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ चलने वाले को ये जो कर्म करने आए, ये करो वो करो ये करो, ये उसके कम जस्ती है। उसमें एकांत में रहने की, भजन ध्यान करने की बात विशेष जस्ती है। संग्रह का, आसक्ति का सब त्याग है उसके लिए। और भक्ति मार्ग वाला होता है, वो सब काम मेरे लिए करता है। जगने से लेकर सोने तक सब काम मेरे लिए करता है। भक्ति या भक्ति मार्ग के साधक की दृष्टि और होती है, ज्ञान के साधक की दृष्टि और होती है। इतना होने पर भी दोनों में थोड़ी एक एक कमी रह जाती है, दोष रह जाता है। ज्ञान मार्ग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करते हैं। ये झंझट है, ये झंझट है, ये मत करो, ऐसा ऊपर से त्याग करते हैं। इससे एक अंत में हरामीपना आ जाता है। वो कर्म को आफत समझ करके छोड़ता है और छोड़ने के बाद उसको आलस्य और हरामीपना घेर लेता है। यहां ज्ञान मार्ग में बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने वर्षों तक साधन किया, इसकी अजमाइश की, तब मैंने ये सार बात निकाली है कि आदमी कर्म का त्याग तो सहजता से कर देता है, पर उसके बाद एक जो हरामीपना आता है वो हरामीपने को समझता भी नहीं, छोड़ने की बात अलग है। मैंने ऐसे बहुत से साधकों को देखा है जो भोजन कम करते हैं, सोना भी कम करते हैं। गीता में आया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो खाने पीने में बहुत सावधान रहने वाले मनुष्यों को मैंने देखा है। ऐसे ही नींद के विषय में भी मैंने कम नींद लेने वालों को भी देखा है। कम नींद लेने से कोई उन पर असर नहीं होता, परंतु ठीक ढंग से पूरे साधन भजन में लगे हुए हों और ठीक ढंग से अपने कर्म को करते हों, ये बात ऐसे साधक प्राय नहीं मिलते हैं। हमारे तो भाई ऐसा ही स्वभाव है, निकम्मा रहने का तो मन ही नहीं करता, आदत है ही नहीं। मैं 10 मिनट भी निकम्मा नहीं रहता, चाहे चिट्ठी बांध ला लो, चाहे सत्संग की बात लिखवा लो, चाहे सत्संग की बात कहलवा लो, मारे से कुछ न कुछ काम हो तो ही रहे। माने 10-12 घंटा सत्संग कराओ, मारे थकावट नहीं आवे। स्वभाव तो इस तरह का बन गया। ऋषिकेश में रहते हैं तो मन में आता है कि यहीं पड़े रहे, लेकिन फिर आना ही होता है। गीता प्रेस का काम है, ये काम है, वो काम है, ऐसे कई कामों की बात आ जाती है। लेकिन विचार से देखें तो ऋषिकेश जैसे एकांत समय में समय बिताना ठीक मालूम देता है। वहां एक पंडित जी थे, कोई उनसे पूछा, पंडित जी हमने तो अभी स्वामी जी से बात की, ये बात बताई, विक्षेप और आलस्य के लिए सबसे बढ़कर क्या उपाय है? आपने भी साधुओं का 40 वर्ष तक संग किया है, खूब फिरे हो, आप कहां तक इस बात को जानते हो? पंडित जी ने कहा कि हम साधुओं के साथ फिरे तो बहुत है, परंतु सुनी किसी की भी नहीं। सेठ जी ने कहा कि मानी नहीं, सुनी तो होगी, क्या करें, कहीं तो भय लगता है और कहीं प्रेम के कारण से हमने ध्यान नहीं दिया। सेठ जी कहते हैं, साधन करने वालों को क्या करना चाहिए, भगवान में प्रेम होने के लिए क्या करें? अच्छा साधन करने वाला अपने को मिला ही है, उन्होंने अपना अनुभव बताया ही होगा, तो उसके अनुसार आप क्या सोचते हैं? हमने रात को भी आपको बहुत सी बातें बताई थी, काम में चाय न लावे, पर इतना तो आप जानते ही हो ना कि वो बात कितनी युक्ति संगत है। पंडित जी ने कहा कि आपसे बढ़कर हमको और ऐसी बात कौन बता सकता है? आप बहुत अच्छी गहरी बात बताते, ऐसी बातें हर जगह सुनने को मिलती नहीं है। सेठ जी ने एक दूसरे आदमी से कहा, देखो आपकी उम्र अब 50 वर्ष की हो गई, लेकिन आप ये तो विचार करो कि इस आयु के बाद भी आप चेतते नहीं हो, आपका अपने परिवार में मोह पड़ा है, धन में मोह पड़ा है, आपका प्रतिष्ठा में मोह पड़ा है, हमको तो देख करके बड़ी दया आती है। एक कोई कंजूस आदमी हो और उसके पास रुपया हो तो हम उसकी कंजूसी तो मिटवा सकते हैं, परंतु जो 50 वर्ष की उम्र आ गई फिर भी साधन भजन में नहीं लगा, उसको साधन भजन में कैसे लगवाए समझ में नहीं आता। हमारे पास यदि दया हो रुपया नहीं हो तो काम कैसे हो, हमारे तो यही दशा हो रही है। इसलिए इतनी उम्र पार कर गए, भगवान में अभी तक श्रद्धा नहीं हुई, अच्छे पुरुषों की बातें आपको अभी भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं कैसे मानूं कि आपका भगवान में प्रेम बढ़ जाएगा। मैं ये तो मानता हूं कि बिल्कुल प्रेम नहीं हो ऐसी बात तो नहीं है, पर अब आपका तीसरा जीवन का तीसरा अध्याय चालू हो रहा है। 25 वर्ष तक एक अध्याय, 50 वर्ष तक दूसरा अध्याय और 50 के बाद तीसरा पन। अब आपका तीसरा पन आ गया, शास्त्र की दृष्टि से बोलता हूं। आपका जो लड़का है भगवानिया, वो काम करता ही है, आपको क्या चाहिए? रोटी और कपड़े के अलावा आपको क्या चाहिए? और आप अब क्या कर लोगे? अब आपके मन में क्या इच्छा रह गई है? एक दिन अचानक चले जाओगे, आपका सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। जिन चीजों को आप संभाल संभाल के रखते हो उन चीजों को जाने कौन काम में लेगा। अब तो बहुत जल्दी सावधान होना चाहिए। अब ये समय तो भगवान को देवो नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐथारा मकान, ऐथारा रुपया और थारो भगवानियों, ऐसा झूठा है। असली भगवान को भजन है जको थे करो नहीं, और नकली संसार है बिन थे छोड़ो नहीं। ये नकली नकली में कितना दिन तक थे फसोड़ा रहे हो, अब थे नकली काम ने छोड़ दो, असली काम ने पकड़ लो। हाल भी समय है, चेत कर लो। फिर भी थाने यदि चेत नहीं हुए तो आ समझ लो कि मारो लड़को है नकली भगवान है, मारो मकान है जो नकली भगवान है, ये समझ लो। लड़का नकली भगवान, नकली काम, नकली मकान, तो ऐसा सब नकली है। थारे चित्र मायने जो भगवान की मूर्ति बसेड़ी है बात सच्ची है। चित्त में थोड़ी कड़ाई लाओ, लोगों कम बात करो, संसार की बातें कम करो, चिंतन कम करो। ज्यादा से ज्यादा थाने लोग मूर्ख बता देवेगा, इस उधारे के आनी है। और यदि थे लोगों से कम बात करता, नहीं बात करता, थोड़ी कड़ाई रखते हुए मर भी जाओ तो थारो के नुकसान है। मन थारे पर दया आवे पर मारी दया काम नहीं करे, थारे ऊपर थारी दया काम करी। वो जो आराम लेने रो स्वभाव है, इस स्वभाव ने छोड़ो थाने डुबा दे वेला। जैसे कोई आदमी गड़ा में पत्थर बांध पानी में डूबे बिन कौन बचा सके, ऐसे ही मन आराम मिले, मन सुविधा मिले, मन कोई कष्ट नहीं हुए। आज जो मन में भावना है वो गड़ा में पत्थर बांधनो है, आराम के लात मारो, थे थारे ऊपर दया करो। हनुमान तेरे भी आप बात जचा है ना। एक हनुमान जी थे, हनुमान दास जी सेठ जी के मित्र। सेठ जी कहते थे कि मैं हनुमान के कारण से ही दोबारा जन्म लिया हूं, तो आता नहीं है इसमें नहीं और कौन है। हनुमान तेरे के बाद जची है, हनुमान दास जी बोलते हैं। जब मैं थकन आ गया माने के करनो है। सेठ जी कह रहे शरीर सु आयो है भाया, मन सु को नहीं आयो। मन तो कठी और जगह लार टांग दियो, शरीर सुमार मन कैर कोई बाता बढ़ावे। तो हनुमान दास जी कहते तो अब आप क्यों वैसे ही करांगा, मन ने मैं बांध तो सका को नहीं। अब वो तो कठिन ही जाए, मारा आतरी बात को नहीं, मारा आतरी बात वो शरीर है जो थारकन लार मेल दियो। सेठ जी कह इतो तो विश्वास करनो चाहे कि मैं थाना वही साधन बतावांगा जो साधन थे कर सको, जो थे काम कर नहीं सको भी साधन को बतायो के काम आवे। तो वहां एक कसेरा जी बैठे हुए थे, ये भी सेठ जी के बड़े अंतरंग थे। उन्होंने कहा तो फिर अब क्या करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं सबसे पहले ये देखो कि संसार के भोगों में आपको रस मालूम देता है क्या, सुख मालूम देता है क्या। जैसे पीलिए के बीमार से डॉक्टर इलाज करते हुए पूछता है सफेद चीज सामने रख करके कि इसमें अब पीलापन दिखता है क्या, वो कहता है कि पीलापन दिखता है, इसका मतलब अभी उसके अंदर बीमारी है। ऐसे ही जब तक भोगों में स्वाद दिखे, रस दिखे, भोग अच्छा लागे, तब तक हाल बीमारी दूर नहीं हुई है। तो मैं थाने जो बात कहूं बहुत सोच समझ कहूं, थे मानव शरीर में आयोड़ा हो, भोगा के सामने थे कमजोर मत पड़ो, थे त्याग करने रो बल रखो। अब तो अठों जाने की तैयारी हो रही है और ये तैयारी में थाने रहने वाला भोग प्रिय लागे, इस बेसी थारो के नुकसान हो सके, बहुत बड़ो नुकसान है। यदि थासू भोगारी आसक्ति नहीं छूटे तो थारे मन में एक दर्द होनो चाहे और भी दर्द रे मायने भगवान ने पुकारनो चाहे, भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। और फिर भी संसार दिखे तो वो भोग दिखे तो क्या भोग नहीं है भगवान है, यूं मानर चालू। लेकिन भोग ने भी भोगना चाहो और भगवान ने भी लेना चाहो, ये असंभव बात है। माने स्वामी जी की बात बहुत अच्छी लगी। स्वामी जी रे खपर में थे कई चीज डाल दो, साग डाल दो, कड्डी डाल दो, कोई चीज डाल दो, सबने मिलार जीम ले ले। ए आ कौन देखे कि भाई इस चीज रो स्वाद अलग ले, इस चीज रो स्वाद अलग ले, एक में मिलार जीम ले। स्वाद बुद्धि सु भोजन नहीं करे, वो वास्तव में बहुत बढ़िया भोजन हुए पर घरवाला इन अच्छों को नहीं माने। घरवाला ने मन में तकलीफ हो जावे तो एक काम करो, दो चीज ले, दो से ज्यादा मत ले, रोटी और दाल ले लो या रोटी और साग ले लो या चावल जो है दाल ले लो और चाहे लाडू और चूरमू ही खा लो, पर दो बेसी मत ले, एक लगाने की एक खाने की। और यदि दूध रो अभ्यास है तो दूध ठीक चीज है, दूध दूध दोरी संख्या में बाधा नहीं डाले। और कोई खाने रमाय में रुचि नहीं रखनी, अठौ जीव सु अपने आप में कंट्रोल करनो है। रसोई में बढ़िया बढ़िया चीज बनती वे और थन लार देता वे पर थे कितनी चीज बनो देखो माने केवल दो चीज पूछो और भी टाइम थाने कोई चीज चौकी लागे कि आ चीज चौकी है आज दो चीज मैं ले लू यू नहीं आगला भी मर्जी पर छोड़ोगे थाने दो चीज चौकी लागे जबकि मारी थाली में दे दो दो चीज दे इस भी अपने वृत्तियां ने मायने असर पड़े वो एक हठपूर्वक त्याग है। हठ ने त्याग ने घणो अच्छा तो नहीं माना पर मदद मिले असली तो यह चाहे दो खाओ चाहे पांच आसक्ति रहनी नहीं चाहिए। जस चीज मिले वैसी लेनी ऊपर से कई चीज नहीं लेनी जैसे कभी साग में कोई कारण सुन नमक कम मिलायो तो लाओ नमक दे आ नहीं करनी कभी कोई मिर्ची कम लाएगी तो और ऊपर मिर्ची मिलाओ यू नहीं करनी ऊपर से कोई चीज लेने की आदत नहीं रखनी ऐ आदत खाने पीने से ही आगे दार बढ़ती बढ़ती खराब हुए आदर्श में ऐ बात काम नहीं आवे। वैराग्य की भी मात्रा हुए और जब अंदर से वैराग्य हुए न वो साधन बहुत तेज हुए खाने पीने का और दूसरी चीजों का सब काम वैराग्य से हल हो जावे भगवान के अर्पण सब करे खूब वैराग्य से रहे भगवान के शरण होकर भगवान ने पुकारे तो आज तक का सब पाप स्वाहा तेरा और मेरा सब आक्षेप स्वाहा। शुरू का जो अपना संगड़िया साथिया पांच छह आदमी आ धीरे धीरे कम हो गया अब तो किताब बचाओ थे केदार है बद्री है धानुको है बस इतना ही जना बचाओ बद्रू तू जाबर ए आपने छोटी अवस्था में हा बद्रू 20 वर्षा को हो कांटा कदरा मिलोड़ा हार कद समाप्त हो जावा इलिए भाई थारे साथ में थारो काल है थारे शरीर में थारो काल लागेड़ो है पहले थेकिया का अब थेकिया का हो गया अभी थाने जोश नहीं आवे जोश आनो चाहिए सब चीजा री उम्र बढ़ती जा रही है और विषयों में जो आसक्ति है वह विषयारी आसक्ति थारी नष्ट नहीं हो रही है कई कारण मैं तो छोटो हो बी टाइम से मैं बहुत सावधान रहता हूं मैं सूर्य भगवान से उपासना करी कि कोई भी स्त्री पर दूसरा की स्त्री पर माँ बेटी पर किसी प्रकार से यदि मन में जरा सी भी खराबी आ जावे तो हे सूर्य भगवान मन तू भस्म कर देना इस वास्ते में साधना करी मैं प्राय हंसी मजाक करने का स्वभाव राखी बोली लेकिन मैं ये बात सुन बड़ो सावधान रहता हूं कि मारी क्रिया के मायने मारे व्यवहार के मायने कोई ऐसी बात नहीं हो जावे कि मैं सूर्य भगवान रो कोप भाजन बनू मैं थाने के बात कहवा संसार की माता है सीता जी है राधा जी है पार्वती जी है याने भी जब चित्र में राम जी रे साथ है विष्णु भगवान रे साथ है लक्ष्मी जी है शिव जी है पार्वती जी रे साथ है तो मैं तो इन्हें भी अच्छो को नहीं मानूंगा मैं तो रामचंद्र जी रो ध्यान करे तो सीता जी ने छोड़ दिया, राम जी रो ही ध्यान करे, शिव जी रो ध्यान करे तो पार्वती ने छोड़ दियो, मैं करता भी क्या, मुझे ये चीज अच्छी मालूम नहीं दी। लक्ष्मी जी को भी कहीं स्थान दिया तो भगवान के चरण दबा रही है, बस इतना तक ही वो चरण दबा रही है और चरण तक ध्यान गया, आगे आगे लक्ष्मी जी का मैंने ध्यान नहीं किया, क्योंकि मन का कुछ पता नहीं है, मन कब किस समय फिसल जाए, ये बहुतों को खराब कर देता है। इसलिए चार बातों में लगा रहा, वैराग्य में, गीता के विवेचन में, नाम जप में और संत महात्माओं के संग में, सत्संग में। बस कुछ प्रमाद हो गया वो बात अलग है, भाई गीता के विवेचन में प्रमाद हो गया, कहीं सत्संग में प्रमाद हो गया और वो बात कोई ऐसे हो जाए तो अलग है, पर इनसे मदद बहुत मिलती है। संसार में यदि बढ़िया से बढ़िया चीज है तो सत्संग है, सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मैंने अपने अनुभव की बात बताई है, आप लोगों को इसलिए सुना दी कि मर जाएंगे, ये पीछे कोई आदमी पढ़ेगा तो उसको कुछ ध्यान में रहेगा। जब कभी भी मन में इधर उधर की बातें आती तो जैसे कोई जोर से तूफान आता है और आदमी भग करके कहीं मकान के अंदर जाकर बैठता है, इसी प्रकार से मैं अपने आप को संसार से हटाकर सीधा भगवान के ध्यान में ले जाता हूं। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जितने साधन है उन साधनों का राजा ध्यान है, और ध्यान की उपलब्धि सत्संग से होती है, भगवान की पूजा ध्यान से ही होती है, ध्यान का फल है भगवान और ध्यान का उपाय है सत्संग। अब क्या बताएं, ध्यान की बात अच्छी नहीं लगती, परंतु सेठ जी ने कहा है कि ध्यान में जितना रस आता है, जितना आनंद मुझे आया है, उतना सिवाय सत्संग और गीता विवेचन के और मुझे कहीं नहीं आया, बहुत आनंद आया। मैं तो ये कह सकता हूं कि अपनी शक्ति लगा करके सत्संग और ध्यान में लगना चाहिए। आपको संसार के अंदर भगवान की दया ही दया दिखेगी, भगवान की दया का अनुभव होना ये भगवान से भी बढ़कर काम है। लोग कहते हैं भगवान को दिखाओ, अरे भगवान के दर्शन से बढ़कर भगवान की कृपा का दर्शन करो। देखो जिस मन के अंदर संसार के भोग पदार्थ और उनका आनंद बसा हुआ था, भगवान की कैसी दया होगी, एक ही क्षण में ये मन भगवान के आकार का हो गया, कितनी भगवान की दया है। इसलिए मैं मानता हूं कि ध्यान से ऊंचा कोई साधन नहीं है। किसी ने प्रश्न किया है, निराकार भगवान की प्राप्ति का क्या लक्षण है। देखो भगवान की प्राप्ति का क्या लक्षण है, ये बात बताने से समझ में नहीं आएगी। गीता जी ने तो लिखा है, यो अंतर सुखो अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेवत सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। ये पांच चीज बताई, अंतर सुख है उसको अपने अंदर ही अंदर आनंद मिलता है, उसको अपने सुख के लिए बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं। और अंतर आराम है माने उसको पूर्ण सुविधा पूर्ण विश्राम अपने अंदर मिलता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश रहता है। जैसे अंधेरे में कोई आदमी बैटरी लेकर चलता है, उसको सांप भी दिख जाता है, बिच्छू भी दिख जाता है, जानवर दिखाता है, खड्डा खोचरा सब दिखाता है, उनसे टलते हुए चलता है। ऐसे अंत प्रकाश से वो संसार को खूब सावधानी से देखता हुआ चलता है और ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये गीता जी में बताए। तो इसमें ये हो, सच्चिदानंद घन में डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। जैसे कोई पानी अथाह जड़ है, समुद्र है, उसमें डूबता है, ऐसे अपने आप में, अपने स्वरूप में डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। इन भावों की बार बार आवृत्ति होती रहे, ये ब्रह्म में रमण करना है। ये निर्गुण रास है। जैसे भगवान सगुण लीला में रास करते हैं, ऐसे निर्गुण स्वरूप में बार बार डूबे रहना ये रास है। संसार का जहां अब अत्यंत अभाव है, वहां कितना आनंद है, पूर्ण आनंद है, चेतन आनंद है, आनंद ही आनंद है। ऐसी बात हर वक्त अपने अंदर गूंजती रहनी चाहिए। उस सुख से बढ़कर कौन सुख है? वहां ये बुद्धि इंद्रियों का प्रकाश नहीं, स्वयं का प्रकाश काम आता है। ये बात कोई कह नहीं सकता, ये तो केवल अनुभव की है। इसलिए संतों ने कहा है कि गूंगा जैसे गुड़ को क्या बताए, ऐसे उस आनंद को कौन कह सकता है। इतना ही कह सकते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। मैं तो एक ये बात कह दूं तो मेरे तो एक रोग हो जाता है। जब ऐसी बात चलती है तो दूसरी बात मैं पकड़ ही नहीं सकता हूं, उसमें डूब जाता हूं, दूसरी बात ध्यान में नहीं आती। फिर दूसरे बात का कई देर के बाद चिंतन करने से, कठिनाई से उसमें आता हूं। उस समय कोई मुझे गीता जी का अर्थ भी पूछे तो याद नहीं रहता है, उसमें डूबा रहता है। एक कोई सुदामा जी थे, सेठ जी के पास बैठे हुए, उन्होंने पूछा कि महाराज उस स्थिति का वर्णन थोड़ा जितना भी आप कर सको करो। सेठ जी ने कहा, सुदामा जी ये चीज वर्णन करने की नहीं है, सबका अभाव, बस सबका अभाव, यही ज्ञान मार्ग का साधन ध्यान है। हर समय जागृत रहे। अब कैसे कहूं, ये तो गुमसुम मार्ग है। शब्द का प्रयोग की गुंजाइश ही नहीं है। ये जानने वाला और जानने में आने वाली चीज, ये सब वहां पर नहीं रहते। एक चेतन मात्र रहता है, उसको ज्ञाता नहीं कह सकते, क्योंकि वो जाने तब ज्ञाता है, वो जानता तो है नहीं, वो है बस। चेतन की कायमी कहने के लिए कहते हैं कि वो सत्य है, ये कहने का ही है। वास्तव में वो स्थिति और ही होती है। ये मिथ्या चीज है ना, इसलिए परमात्मा को सत्य कहते हैं, सत्य की भी जरूरत नहीं। क्योंकि कोई हमसे पूछे कि अभी क्या है तो कहेंगे कि दिन है, तो दिन है, वास्तव में दिन थोड़ा ही है। रात्रि का अभाव है, इसलिए उसको रात्रि की अपेक्षा से दिन कहते हैं, नहीं तो दिन भी नहीं और रात भी नहीं। सूर्य के पास यदि कोई रहता हो, वो ये कभी नहीं कहता कि अब दिन हो गया, क्योंकि वहां रात होती नहीं है। ऐसे ही उसमें ज्ञातापणा नहीं है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान। आनंद के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं। देखो जैसे सपना टूटता है तो स्वप्न को याद नहीं करते, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें स्वप्न में देखते थे, कितना सोना चांदी रत्न आदर मान सत्कार स्वप्न में मिला, परंतु जो ही स्वप्न में टूटा, स्वप्न टूटा, कितना सोना चांदी हमारा चला गया बताओ। खूब सोने की मोहरें थी, खूब सब कुछ था, लेकिन स्वप्न टूटने के बाद हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारी कुछ चीजें चली गई। ऐसे ही संसार में रहना चाहिए, फिर थारे गैलने माने पीछे चेतन ही बच जाएगा। ये मन बुद्धि आदि सब कचरा साफ हो जाता है। इतनी आनंद की बात, इतनी मस्ती रहती है, फिर नींद की भी जरूरत नहीं रहती है। नींद न आने पर भी उस आनंद की मस्ती से इतनी तरावट आती है, बुद्धि में क्या, इंद्रियों में क्या, मन में क्या, वो समाया नहीं रह, समावे ही नहीं। मन बुद्धि इंद्रियों में समाती नहीं रहा, एकदम जागृति रहती है। अंतःकरण में इतनी जागृति हो जावे कि जान जान सोवे पर नींद नहीं आवे। क्या विचित्र बात है, कोई आदमी शोक में जागता रहे, दुख में जागता है, और ऐसे भगवान वार भगवान के अंदर जिसकी वृत्ति है उसको भगवान का आनंद मिलता है, उसको नींद नहीं आती। नींद तो दोनों को ही नहीं आती, पर एक के अंदर दुख की ज्वाला उठ रही है और एक के अंदर आनंद का, आनंद की लहरें उठ रही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, देख लो, ध्यान हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। यदि अभी मैं घंटा दो घंटा सो जाऊं तो मन नींद नहीं आ गया, क्योंकि अब आप इस चीज में डूबेड़ो हो। जितना नींद रहा उपाय है थे कर देख सको, नींद नहीं आ गया। कोई सुंगड़ी सुगा देवे तो बात दूसरी है, बैठे मारो बस नहीं चले, और उसका असर होगा कि नहीं होगा मैं पूरा कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जड़ पदार्थ है, वृत्तियां भी जड़ है। कभी सुंगड़ी सुंगड़े का काम पड़ा नहीं, और चाहे भी यही कि कभी ऐसा पड़े नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आदमी को डूबे रहना चाहिए। अब बताओ कठे आलस रहवे, आलस नाम की चीज ही नहीं है। एक आदमी ने प्रश्न किया, मन के द्वारा जो शब्दों का ज्ञान होता है उस समय भी क्या ये स्थिति होती है, जैसे कोई आदमी बोलता है और सुनता है उस समय ऐसी स्थिति क्या बनती है? गौर करने से उस रास्ते पर चलने के लिए खड़ा है, आगाड़ी जाकर के वो स्थिति बन सकती है, पर अभी वो स्थिति नहीं, अभी वो रास्ते पर खड़ा है। कोशिश करी जावे तो आगाड़ी और रस्तो भी चीज न पकड़ा सके, चेष्टा नहीं की जावे तो भाई आ बात नहीं हुई। जैसे कोई सोयो वो आदमी वे बीर कने कोई ढोल बजावे तो बिन ज्ञान नहीं है, न शरीर को है न शब्द को है, फिर वो बात तो करे ही कहीं। ऐसे ही जो भी तत्व रामायण डूबियोड़ो रहे बिरे सामने कितनी संसार की बाता करो, बिरे ऊपर कोई असर नहीं है। मन कदई कदई मारे सामने आदमी बैठड़ा वे, अंदर ही अंदर म्यारो नाम लेने में बहुत समय लगे, उनका नाम याद करने में बहुत समय लगे। संसार की भूल रहे बात ऐसी भूलवे थोड़ी सी कोई याद रहे भी थोड़ी सी याद न घड़ो काम में लेना चाहू भूली जाऊं। तो ये मैं जान करके करना चाहूं तो भी नहीं हो सकती। कभी कभी मेरे पास बैठे हुए लोग कोई बात करते हैं, कमरे के भीतर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बात को भी जबरदस्ती से सुनता हूं। जैसे कोई नींद में आता आदमी, नींद लेता हो, थोड़ी देर देखता हूं, फिर वो सत्संग जैसे सुनता है नींद लेने वाला, ऐसे मैं उसकी बात सुनता हूं। श्वास जो अंत अभी शरीर में आते हैं, ये अपने गति से चलते हैं। इन श्वास की तरफ देखो और इन श्वासों से नाम जप करो। मैंने तो ऐसा बहुत किया। और अपने कान से सुनो, होठ से मत बोलो, श्वास चलते रहे, आते रहे, जाते रहे, इससे चित्त एकदम निरुद्ध हो जाता है। पर ये ध्यान से पहले की बात है। संसार से उपराम होकर के चिंतन किया जाए वो बहुत विलक्षण होता है, क्योंकि वैराग्य में संसार से संबंध एकदम कटा हुआ होता है। यदि कोई उस समय में परीक्षा करना चाहेगा अपने आप की कि मुझे बाहर का ज्ञान है या नहीं, तो उसको बाहर का ही ज्ञान होगा, क्योंकि उसके लिए परीक्षा करे न करे यही बात रहनी। परीक्षा क्यों करी? परीक्षा करने का अर्थ भी यही है कि परीक्षा खुद भी तो बाहर का ही तो ज्ञान है, ये परीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक नाम का जब सुगम पड़ता है, बड़ा नाम होता है, उसके उच्चारण में कई मात्रा में कई रसदीर्घ में कई त्रुटि हो सकती है, पर राम है, शिव है, छोटे छोटे नाम है, इनमें त्रुटि नहीं होती। सगुण निर्गुण की बातें बताई, सब बातों का सार यह है कि एक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो भगवान ही है, ब्रह्म है, आत्मा है, एक ही अनेक नाम है। और किसी को कोई नाम नहीं है तो एक बोध शक्ति है, बोध शक्ति। इसलिए शास्त्रों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानानंद घनम ब्रह्म, विज्ञानानंद घनम ब्रह्म, ऐसी ऐसी बातें बताई गई। ऐसी स्थिति में आदमी डूब जाए और उसका शरीर चला जाए तो उससे बढ़कर क्या उसकी मृत्यु हो सकती है? बहुत बढ़िया मृत्यु है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
Narayana, 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 Narayana
नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण
नारायण श्रीमन् नारायण नारायण
नारायण श्रीमन् नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण
नारायण
नारायण
नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण
नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् 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 नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण
ராம்
ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ராம் ரா
की जय। मोर मुकुट वंशी वाले
की जय।
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय।
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की जय।